प्रेस्थ ने अपने पुत्र पृथुसेन का पालन अभिजात वंश के कुमारों की भांति कर उससे अभिजात वंश के योग्य शस्त्र और शास्त्र की भिक्षा भी दी। पृथुसेन किशोरावस्था समाप्त होने पर महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के पौत्र विनय शर्मा, सामंत कार्तवीर के पुत्र सुकिद, महासाल समर्थक के पुत्र इंद्रदीप और मद्र की गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के कनिष्ठ पुत्र वसुधीर के समान विद्यापार्जन के लिए तक्षशिला भी गया। सरसों से ही सम्मान पाने के कारण पृथुसेन में आत्मगौरव का भाव पिता से अधिक और विनय का चातुर्य कम था। उसकी प्रवृत्ति मार्ग रोकने वाली अर्गला के नीचे से सिर झुकाकर निकल जाने की अपेक्षा अड़चन को गिरा देने की ओर थी। धन और प्रतिभा में अपने समवयस्कों से बढ़कर होने पर भी उसकी तुलना में सम्मान की न्यूनता उसके लिए असहाय हो जाती। मगध के ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र द्वारा मौर्य कुल के अंतिम राजा विहदत्त के वध और मगध की राजक्रांति के समाचार सुदूर मध्य में अतिरंजित होकर पहुंचे। मध्य के वर्णाश्रम धर्मावलंबी कुलों और जन में जनश्रुति थी कि देवताओं के अजय सेनापति कार्तिकेय ने जम्मूद्वीप को मौर्य वंशी शूद्र राजाओं के कलंक और नास्तिक मुंडी धर्म के अभिशाप से मुक्त करने के लिए ही सेनापति पुष्पमित्र के रूप में जन्म लिया है। अग्निमुख विप्रश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पत्यांजलि ने इसी देव कार्य के लिए सेनापति को राजसु यज्ञ के पूर्ण से अवसित कर अजय कर दिया है। मध्य के महाराज धार्मिक मिलिंद की आज्ञा से यज्ञ में पशु बलि का विरोध हो जाने के कारण यज्ञों की महिमा और शक्ति क्षीण हो गई थी। मगध में वर्णाश्रम का पुनरुत्थान होने के उत्साह से मध्य में भी चीर उपेक्षित यज्ञ समारोह पुनः बलि सहित आरंभ हो गए। यजन याजन से विरक्त याज्ञिकों और पुरोहितों ने पुनः अपने वर्ण चिन्ह शिखा सूत्र और तिलक धारण किए। सांगल का वातावरण महायज्ञों के हविष यव तिल धान्य धित और मंत्रपूत पशुओं के मांस के भस्म होने के गंध से भर गया। देवार्चन के उपकरण शंख घंटा घड़ियाल कास्य ताल और भेरी के नाद से वायु कंपित होने लगा। वर्णाश्रम धर्म के उत्थान की प्रतिक्रिया में धर्मराज मिलिंद की श्रद्धा से भिक्षा में पाए ग्रामों के अग्रहारों से और नगर के निर्वाण कामी उपासकों द्वारा घोषित तथागत के सहस्त्रों भिक्षुओं से पूर्ण विहार में विक्षिप्त मधुछत्रों की भांति गुंजार उठे। चैत्यों में तथागत की प्रतिमा के सम्मुख घंटों का नाद अधिक काल तक और अधिक ऊंचे स्वर से होने लगा। हिंसा के पाप की ओर भटकते हुए नगर समाज के उद्बोधन के लिए सतत भिक्षुओं वीथियों में सूत्र पाठ द्वारा धर्म का संदेश देते फिरने लगे। चैरवती भिक्षुवो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। श्रवण में सांगल पर पावस के काले मेघ उमड़ आए। नगर के पथों और वीथियों पर भारी वर्षा से कीच और जल फैल जाता। नगर विवश स्थिरता से स्थिर हो जाता। वर्षा थमने पर चटकीले धाम से नगर के प्रस्तर निर्मित भवन और पथ तपने लगते। प्रसादों और साधारण भवनों के निवासी वताशहीन ताप से व्याकुल और सामाजिकता के अभाव से उद्युग्न होकर उपवनों और उद्यानों में समाज का आयोजन करते। मेघों के सहसा उमड़ आने पर बौछारे उन्हें अपने भवनों का आश्रय लेने के लिए विवश कर देती। सांगल के नगर समाज की मानसिक अवस्था भी वैसी ही थी। यज्ञ की शक्ति द्वारा वर्णाश्रम के पुनरुद्धान के लिए व्यग्र वर्णाश्रमी समाज और धर्मचक्र की नित्य प्रतिद्वंदिता से जन श्रांत और विरक्त हो रहा था। अभिजात समाज देवताओं और कर्मफल के भय से उन्मुक्त बारिश जैसे लोग के उच्छृंखल लोकायत सिद्धांतों के प्रचार के कारण जन के अनाचार की आशंका से त्रस्त थे। मारिस के यज्ञ बलिकर का विरोध करने और संघ स्थिवर के आदेशानुसार मूर्ति उत्कीर्ण न करने के अपराध में धर्मस्थान से दंडित होने के कारण जन मौन रहकर भी क्षुब्ध था। धर्मावस्था में मधुपर्म के अवसर पर आर्य रुद्रधीर और पृथ्वीसेन के विवाद का निर्णय परिणाम और आशंका के कारण स्थगित ही रहा। मध्य के गणराज्य की सेना में नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की समस्या अनेक कुलों की परस्पर प्रतिद्वंदिता के कारण परिषद में स्थगित रही। सबसे अधिक विक्षिप्त के कारण थे मध्य की उत्तर पूर्व सीमा से आने वाले दार्वराज यवन केंद्रस के आक्रमण के समाचार। महाराज मिलिंद के दीर्घ राज्यकाल में और तदुपरांत कुलगण राज्य के समय भी अभी शताब्दी से अधिक समय तक आक्रमण और युद्ध के संकट से मुक्त मद्राज की प्रजा और सांगल का समाज युद्ध की अनुभूति और भावना भूल चुके थे। उनकी कल्पना यज्ञों के अनुष्ठान के लिए बलि, धन संग्रह, चैत्यों की स्थापना, भिन्न प्रदेशों से व्यापार द्वारा समृद्धि, कुलों के अग्रहारों में वसी कृषक प्रजा से स्वामी भाग ग्रहण करने, दूसरे प्रदेशों से सबल भृत्य योग्य दासों और लोल अंगी दासियों को लाने और गण परिषद की सदस्यता के अधिकार और सम्मान के लिए अनेक कुलों की स्पर्धा से ही पूर्ण थी। प्रतापी यवनराज मिलिंद की शासन व्यवस्था कुल गणराज्य के हाथों में जाने पर मद्र की सैनिक व्यवस्था भी बदल गई। धार्मिक मिलिंद के समय मध्य का राजकोष बौद्ध विहारों की सेवा से रिक्त हो चुका था। महाराज मिलिंद की विजय लिप्सा के समय कि सदा सानंद 20,000 सेना के पोषण के लिए अब उपाय न थी। मिलिंद राज के आयुधजीवी सैनिक महाराज की युद्ध से वैराग की नीति से उदासीन हो जाने के कारण दूसरे प्रदेश की सेनाओं में चले गए थे अथवा अन्य व्यवसायों में लग गए थे। अनेक ने धनुष और खड़ के स्थान पर काषाय, चिविर और भिक्षा पात्र ग्रहण कर लिए थे। गण के कोष में द्रव्य का अभाव देखकर महासेनापति गणपति मिथोद्रस ने सेना का आयोजन कुलों को सौंप दिया था। मध्य के कुल गणराज की परिषद के प्रत्येक सामंत सदस्य को कुल गण की सेना के लिए 500 से 1,000 तक सैनिक और प्रत्येक साधारण सदस्य को 200 सैनिक प्रस्तुत करने का भार सौंपा गया था। कुलों के सम्मान और शक्ति के अनुकूल उन्हें सैनिक सेवा के मूल्य में गणराज्य के 5 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक के अग्रहार अर्पण किए गए थे। केंद्रस के आक्रमण के समय कुलों द्वारा आयोजित यह सेना केवल गण परिषद के लेखकों के ताड़पत्रों और सदस्यों की कल्पना में ही विद्यमान थी। अग्रहार के गांवों की प्रजा से प्राप्त वलीकर सैनिकों को पोषण के लिए नहीं सामंतों के विलास में व्यय हो रही थी। युवा पुत्र के शोक से जर्जर वृद्ध सेनापति अरहत धर्मरक्षित के अनासक्त उपदेश से संतावना प्राप्त करने का यत्न कर रहे थे, परंतु केंद्रस के आक्रमण से गणराज्य की रक्षा के लिए कर्तव्य के विचार से उन्होंने परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन को मंत्रणा के लिए परिषद निमंत्रित करने का आदेश दिया। परिषद के संवाहक आचार्य ने परिषद के गणपूरक सामंत कार्तवीर को आदेश दिया। अनेक दिन के विलंब से परिषद सम्मिलित हुई। महासेनापति ने चेतावनी दी, गण की सेना केवल सेना का परिहास मात्र है। आत्मरक्षा के लिए गण तुरंत उचित सेना संसाधन की व्यवस्था करे। आचार्य प्रवर्धन ने संग्राम यज्ञ के अनुष्ठान और सेना संधान के लिए धन की आवश्यकता बताकर गणकोष में विशेष बलि एकत्र करने के लिए राज्य बलि में वृद्धि की विज्ञप्ति कर दी। सांगल का समाज वर्षा काल के कादर्म से स्लथ पावस के घाम से कुम्हलाया हुआ और वताशहीन उत्ताप से व्याकुल तथा केंद्रस के दस्यु दलों के प्रतिदिन समीप आने के समाचार से त्रस्त और चिंतित हो रहा था। पथ, वीथियां और पण विरूप और स्वभावहीन हो रहे थे। आक्रमण का त्रास युद्ध के लिए वलात कर उघाते फिरते राजपुरुषों के आतंक से और अधिक असहाय हो रहा था। जन समाज के हृदय में युद्ध की विजय पाने का उत्साह नहीं, उस भय से त्रास पाने की विभीषिका फैल रही थी। सब ओर त्रासमय प्रतीक्षा थी। केंद्रस के आ पहुंचने पर क्या होगा? कुल गणराज्य में कुलीन वंशों के आतंक और युद्ध के लिए बढ़ती राजस्व वली और सामंत के सैनिकों द्वारा नागरिकों, शिल्पियों और कृषकों की सैन्य सेवा के लिए बलात् धर लिए जाने से मुक्ति मिलेगी या केंद्रस के सैन्य दल द्वारा अधिक हत्या और अपहरण होगा? केंद्रस के निरंकुश रौद्र प्रताप और उसकी करुण प्रजावत्सलता की अनेक कल्पित अतिरंजित कथाएं आपनकों और पढ़ियों में फैल रही थी। सब ओर दैव के सम्मुख असमर्थ का भाव था। श्रेष्ठी सार्थवाह और व्यापारी आशंका से अपना समीपवर्ती मलव कंठ और गण के प्रदेशों तथा सूरसेन और मगध की ओर भेज रहे थे। सामंत सावर्थ कार्तवीर और आचार्य प्रवर्धन के प्रसादों में अनेक प्रहर रात्रि वीत तक मंत्रणा होती रहती। आचार्य प्रवर्धन अनेक गुप्त संदेश सूरसेन और मगध भेज चुके थे। वे आशा कर रहे थे वर्णाश्रम का पुनरुद्धारक ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र केंद्र से मध्य की रक्षा के लिए सेना भेजकर मध्य में मगध की भांति मुंडी धर्म का नाश कर वर्णाश्रम की स्थापना करने से न चुकेगा। वे इस प्रयोजन की विज्ञप्ति परिषद में उपस्थित कराना चाहते थे, परंतु यवन सामंतों तथागत के धर्म चक्रों के प्रति अनुरक्त गणपति सामंत इंद्रसेन और धर्मस्थ देव शर्मा के विरोध के विचार से ऐसा न कर सके। सामंत सावर्थ और कार्तवीर इस समय सेना संधान पर केंद्र से आत्मरक्षा के साथ ही पौरव वंश के उत्तराधिकारियों को राज सिंहासन पर बैठा कर पुनः पौरव वंश के राज स्थापित करना चाहते थे। गण के महाशाल श्रेष्ठ और व्यापारी गण के सेना संयोजन के लिए अन्न वस्त्र रथ अश्व और अन्य सामग्री मन चाहे मूल्य पर प्रस्तुत करके दोनों हाथों से द्रव्य संचय कर उसे तक्षशिला पुष्पपुर और मथुरापुरी के अंतरायणोपणों में भेज रहे थे। सायंगल नगरी के अनेक पीढ़ियों की पाद से भरे समाज में महापंडित महावृद्ध धर्मस्य देव शर्मा वयोवृद्ध गणपति मिथोदरश वृद्ध प्रेस्त जैसे कुछ ही व्यक्ति थे जिनकी स्मृति में युद्ध का अनुभव शेष थे। गणपति की स्मृति में आक्रमणकारी विजेता के रूप में और महापंडित देव शर्मा की स्मृति में पराभूत विजित के रूप में वह स्मृति थी। केंद्रस के सांगल की ओर बढ़ते आने के समाचार से धर्मस्थ की स्मृति नेत्रों के सम्मुख अग्नि के विभाट में प्रशस्त अट्टालिकाओं का अंगारों का रूप धारण कर गिरना नगर पर छाए धुएं के मेघों से श्वास वरोध पथों और वीथियों में रक्त की धाराएं और कीचड़ स्त्रियों का आर्तनाद पराजित अभिजात समाज का बंदी के रूप में अपमान प्रत्यक्ष होने लगता। पुत्र शोक से विह्वल अनासक्ति की साधना में आत्मविस्मित गणपति का अनेक बार उद्बोधन कर वे गण की रक्षार्थ विचार के लिए परिषद का निमंत्रण कराते, परंतु परिषद का समय अप्रासंगिक विवाद में समाप्त हो जाता। महाश्रेष्ठ प्रेस्त ने भी परिस्थिति की उपेक्षा न की थी। प्रेस्त ने गण के सैन्य आयोजन कार्य में सैकड़ों अश्व और रथ समीपवर्ती देशों से मंगवाकर बेचे और सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं लाभ उठाया। महापंडित धर्मस्थ और गणपति की युद्ध विषयक चिंता जानकर प्रेस्त ने स्वेच्छा से 1,000 स्वर्ण मुद्रा कोष में बलि अर्पण कर दोनों का विश्वास और आदर प्राप्त किया और अत्यंत गुप्त मंत्रणा में योग देने का अधिकारी बन गया। प्रेस्त ने सेना का नियंत्रण विशेष जाने परखे सेनानियों और नवीन विश्वास पात्र बलाधिकृतियों के हाथ में रखने का परामर्श दिया। सेना संधान के विषय में विशेष परामर्श करने के लिए पुनः परिषद सम्मिलित हुई, परंतु आचार्य प्रवर्धन की कूटनीति के कारण सेनापतियों के पद परिवर्तन और निर्वाचन का कार्य ठीक से न हो पाया। सामंत कार्तवीर के आग्रह से आर्य इंद्रदीप और आर्य विष्णेश अश्वसेना के और आर्य विनय शर्मा रथ सेना के नवीन बालाधिकृत नियत हो गए।